हाय ऑल, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टीन टॉक्स पॉडकास्ट। आज मेरे साथ इस एपिसोड में मुझे ज्वाइन किया है एक बहुत ही टैलेंटेड, मोटिवेटिंग, हार्ड वर्किंग और स्मार्ट शख्सियत ने, जिनका नाम है नमन जोशी। मैं अपने सभी लिसनर्स को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा नमन जी का। नमन ने क्लास 9 से जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत में शिक्षा प्राप्त की है और उसी दौरान 14 वर्ष की आयु में एक उपन्यास लिखा, मैड एलियन। उनके नोवेल का विमोचन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर द्वारा किया गया था। नमन हमेशा ही को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे पोएम्स, स्पीच, डिबेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। अभी तक वह बहुत से स्कूल्स में जाकर बच्चों से बात कर चुके हैं। वह ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिसमें समाज कल्याण हो। BSDN बोर्ड से डर नहीं प्रोग्राम के तहत उन्होंने फ्री ट्यूशन दिए हैं। हिंदी संवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने हिंदी भाषा का महत्व समझाने की एक बहुत अच्छी कोशिश की है। नमन उत्तराखंड बाल विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में उन्होंने thenamanjoshi.com वेबसाइट लॉन्च की है और उनका मकसद लघु उद्यमियों को इंटरनेशनल मार्केट दिलवाना है। नमन का इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदी रिसर्च में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुका है जिसका शीर्षक था गुप्त भूषण कुमाऊनी लोक साहित्य एवं साहित्य। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है। आई होप आपको इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी अपने सभी लिसनर से एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छोटा सा इंट्रोडक्शन कह के इतना बोल दिया नमन, आप बोर तो नहीं हो गए?
बिल्कुल नहीं मिर्गेश, बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, भला इस गजब सी आवाज सुनकर कौन ही बोर होगा।
गजब बेइज्जती है। खैर, पहला क्वेश्चन आपके लिए नमन।
आपने 14 वर्ष की आयु में नोवेल लिखा था, मैड एलियन। तो इतनी छोटी सी एज में आपको नोवेल लिखने का मोटिवेशन कैसे मिला, और आप अपने छोटे भाई बहन जो कि इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको क्या फॉर्मूला देंगे कि उनको भी इतनी छोटी सी एज में बहुत सारा मोटिवेशन मिले?
धन्यवाद मृगेश मुझे अपने इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। आपका ये सवाल बहुत ज़्यादा चर्चित सवाल है, अक्सर मैं जहाँ भी जाता हूँ उसे ये अवश्य पूछा जाता है कि 14 वर्ष की आयु में उपन्यास लिखने का ख्याल कैसे आया, या ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि उपन्यास को लिखा जाए वो भी परफेक्ट 14 साल की उम्र में। तो सबसे पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उपन्यास लिखने की ये प्रक्रिया किसी भी तरह से योजनाबद्ध नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कक्षा 6 में ही मैं निर्णय करके बैठ गया था कि मुझे 14 वर्ष की आयु में उपन्यास लिखना ही है, या कक्षा 9 तक आते आते मुझे लिटरेचर के फील्ड में कुछ बड़ा करना है। हालांकि ये बात अलग है कि कक्षा 6 से ही मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और कक्षा 8 तक आते आते लगभग 200 से 250 कविताएं मैं लिख चुका था। इस सवाल का बेहतर ढंग से जवाब देने के लिए मृगेश मैं आपको और हमारे सभी श्रोताओं को समय से थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करूँगा। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी 8 तक की शिक्षा यूनिवर्सल इंटर कॉलेज चंपावत से हुई। उसके बाद कक्षा 9 में मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करी और जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाया। रही बात इसकी कि मैड एलियन की रचना किन कारणों से हुई, तो मुझे लगता है कि परिवेश के बदलाव के परिणाम स्वरूप ही मैड एलियन लिखा गया। मृगेश, जिस परिवेश में मैं कक्षा 8 तक रहा वो परिवेश ऐसा था कि जहां आपको अपनी गतिविधियां करने के लिए, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता था। आप एक ऐसे परिवेश में रह रहे थे जहां अधिकांश समय बस्ता पकड़कर स्कूल जाने में और स्कूल आने में ही बीत जाता था। बचे हुए समय में बच्चा क्या करता था? बच्चा होमवर्क करता था। तो ये परिवेश ऐसा परिवेश था जहाँ आपके पास अधिक समय नहीं था और हम मनोरंजन के लिए तकनीकी साधनों पर अधिक आश्रित रहते थे। वहीं इसके उलट जवाहर नवोदय विद्यालय का परिवेश ऐसा परिवेश था जहां आपके पास बहुत अधिक समय था। अगर आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जवाहर नवोदय विद्यालय के परिवेश से बेहतर कोई परिवेश होगा। आपके पास बहुत अधिक समय है, कक्षा 9 का सिलेबस कोर्स उतना अधिक नहीं है कि आप सुबह से शाम तक बैठकर केवल और केवल पढ़ रहे हैं, आप कितना ही पढ़ पाएंगे? मतलब सिलेबस इतना ज़्यादा है नहीं कि आपको सुबह से शाम तक पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे में यह रहता था कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ बहुत आसानी से कर सकते थे और उन सारी चीज़ों के लिए आपके पास समय बच जाता था। स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे स्पोर्ट्स के प्रति आकर्षित रहते थे, लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के प्रति मेरे अंदर ऐसा कोई रुझान पहले से ही नहीं रहा है, जिस कारण ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब विपदा वाला समय था कि आखिर किस प्रकार से अपने समय को बैलेंस करना है, किस प्रकार से अपने समय को मैनेज करना है और कैसे अपने समय को मैनेज करके मैं अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकता हूँ और कैसे मैं खुद को प्रसन्नता की तरफ आकर्षित कर सकता हूँ। तो मेरे पास एकमात्र ऑप्शन यही था कि हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं कविताएं नहीं लिख रहा था, कविताएं जहां मैंने 8वीं तक का 200-250 कविताएं लिख चुका था, उसके बाद जो नवोदय विद्यालय में जब आया तो वहां भी मैं कविताएं लगभग लिख ही रहा था, लेकिन कविताओं का क्या है कि कविताएं 2 दिन में ख़त्म हो जाती है, 3 दिन में ख़त्म हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा मुझे उन कविताओं के विषय में सोचने की ज़रूरत नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं किसी मुद्दे पर कविता लिख रहा हूँ और मुझे लिखनी है तो मैं उस विषय के बारे में 1 दिन 2 दिन 3 दिन सोचूंगा और 4th दिन कहीं ना कहीं कविता के रूप शब्दों के रूप में वो कविता स्पष्ट हो ही जाएगी या निकल ही जाएगी। तो इस प्रकार से मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिससे कि मेरा टाइम भी बैलेंस हो, मैं खुश भी रहूं और मैं प्रसन्न भी रहूं। तो मेरे पास एकमात्र ऑप्शन था कोई ऐसी बड़ी रचना लिखना जिसमें मैं खुद को व्यस्त रख सकूं, तो मैंने ऐसा ही किया। अब उस समय ऐसा था कि मेरे पास ये प्लान नहीं था कि मुझे अपनी किताब को पब्लिश ही करवाना है, मैं सोचता था कि चलो लिख रहा हूँ कम से कम मैं खुश हूँ, मैं आनंदमय महसूस कर पा रहा हूँ, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। दिन में जहाँ मैं सोता नहीं था, क्योंकि अधिकांश बच्चे सो जाते थे तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ अकेले बैठे हुए हैं, तो ऐसे में एकमात्र ऑप्शन यही बचता है कि क्लास में जाओ और क्लास में बैठ कर, अब सिलेबस भी उतना है नहीं पढ़ने के लिए तो आप क्या ही पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसा करना जिससे आपको इंटरनली खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये जो लिटरेचर वाला फील्ड था वो मुझे इंटरनली अच्छा फील करवाता है, आंतरिक रूप से अच्छा फील करवाता है, इसलिए मैं मेडेलिन उपन्यास 176 पृष्ठ का जो उपन्यास है वो इतने आसानी से लिख पाया। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आसान प्रक्रिया थी, इसको इस मेडेलिन की कहानी मैंने बहुत बार परिवर्तित करी, कभी मैं 20 से स्टोरी लाया, कभी कहानी की शुरुआत अंतिम से हुई, कभी कहानी की शुरुआत से ही हुई, तो इस प्रकार से 10वीं 12वीं बार जब सब कुछ फिक्स हो गया तब जाके मैंने मेडेलिन किताब को प्रकाशित करवाया। तो मेन चीज़ ये है, रही बात इसकी कि वो बच्चे जो उपन्यास लिखना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं छोटी सी उम्र में, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने डिसीजन पर विश्वास रखना चाहिए, या तो डिसीजन लो मत, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, या तो डिसीजन लो मत, या डिसीजन ले रहे हो तो कम से कम उसके आउटकम समाज को दिखा सको, या कम से कम इतना उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए कर सको कि आपको संतुष्टि हो, आपको प्रसन्नता महसूस हो। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन के रूप में बात कहूँ तो इस डिसीजन की रिस्पेक्ट मुझे ही करनी थी, क्योंकि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। पहली चीज़ यही है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जिसे लेकर आपको खुशी मिलती है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने डिसीजन पर विश्वास रखिए कि आपके द्वारा लिया गया डिसीजन सबसे बेहतर है, क्योंकि वो डिसीजन किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा, वो डिसीजन आपको ही प्रभावित कर रहा। हो सकता है कि आपका एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, हो सकता है कि आपका एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रति आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएं, हो सक मतलब बहुत सारी चांसेस, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है इस चीज़ को लेकर। तो मैं उन सभी साथियों से को यही सुझाव देना चाहूँगा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं सबसे पहले आप या तो डिसीजन लीजिए नहीं, अगर डिसीजन लेते हैं तो कम से कम उस डिसीजन का सम्मान कीजिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि ओवरऑल समाज आपसे ही पूछने वाला है कि आपने ये चीज़ करी है तो इसका बेनिफिट क्या हुआ है, इससे आपको क्या मिला है, इससे समाज को क्या मिला है। तो दूसरों को देख कर कुछ करने की जिज्ञासा उत्पन्न तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आपके अंदर से खुद नहीं आता है कि मुझे ये करना है करके। जैसे आप मुझे देख के प्रेरित ना होइए कि मैंने 64 साल की उम्र में उपन्यास लिखना है तो लिखा है तो आपको भी 64 साल की उम्र में ही उपन्यास लिखना है या आपको ही उपन्यास लिखना है। अगर आपको अंदर से लगता है कि आप लिख सकते हैं तो लिखिए, ज़रूर लिखिए। और रही बात इसकी कि मतलब किस प्रकार से आप चीज़ों को कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, आपके ऊपर ही रहता है कि आप अपने डिसीजन का सम्मान कैसे करते हैं और किस प्रकार से आप उस डिसीजन के आउटकम समाज को दे पाते हैं, खुद को दे पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने डिसीजन का सम्मान कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और सारे कार्य सफल होंगे, सारे कार्य सही होंगे, सफल नहीं भी होंगे तो असफल होंगे, कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ क्रिया उन कार्यों के प्रति रहेगी ही रहेगी।
क्या बात है
नमन, मैं आपको 9th क्लास से जानता हूँ और मैंने खुद देखा है जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते थे तब आप लिखना स्टार्ट कर देते थे और 10th और 12th क्लास में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। पर हमारी सोसाइटी में ये चरण बना दिया गया है कि जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे वो साइंस स्ट्रीम लेगा और उससे नीचे वाले आर्ट्स, कॉमर्स ये सब लेंगे। तो आपके 12th में 90% से ऊपर मार्क्स आने पर भी आपने अपने मन का सब्जेक्ट हिंदी चूज़ किया, तो आपने इस डॉक्टर इंजीनियर वाली मानसिकता को कैसे फेस किया?
जी मृगेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ये चलन बन चुका है कि वो बच्चा जिसका जिसकी बुद्धि कौशल बहुत बेहतर है वो विज्ञान पढ़ेगा और उससे कम बुद्धि कौशल वाला कॉमर्स पढ़ेगा और सबसे कमज़ोर छात्र आर्ट्स पढ़ेगा। ये मुझे लगता है कि ठीक वैसा ही हो गया जैसा जाति प्रथा में होता है कि ये पर्टिकुलर काम इस जाति समुदाय का करेगा, ये पर्टिकुलर काम इस जाति समुदाय का करेगा। यानी कि मुझे लगता है कि बुद्धि कितनी कौशल है या कितनी कुसार बुद्धि है इसका पैमाना हमें विषय को नहीं बनाना चाहिए। अगर मैं उदाहरण के रूप में कहूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है कक्षा 10वीं तक का विज्ञान, बोले तो साइंस और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, तीनों ही सब्जेक्टों में उन्हें उतना ही इंटरेस्ट रहता है जितना कि उन्हें मैथ में रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अचानक से बायोलॉजी चूज़ कर लेते हैं। तो अब हम इसको आधार नहीं बनाएंगे उनकी बुद्धि, उनकी कुसार्ग बुद्धि को मापने का कि उन्हें गणित समझ में नहीं आती है। उन्हें गणित समझ में आती है लेकिन उन्हें बायोलॉजी, उन्हें जीव विज्ञान गणित से बेहतर समझ में आती है, इसलिए वो गणित को छोड़कर बायोलॉजी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज की ये रूढ़िवादी विचारधारा है और इस रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और जैसा कि आपने बताया कि 90% अंक लाने के बावजूद मैं हिंदी ऑनर्स को चूज़ करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं, जैसे कि मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने डिसीजनों का सम्मान किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि लाइफ में, अपने इस जीवन में हमें हमेशा निर्णय लेने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पून फीडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब नहीं चलता है। कक्षा 8वीं तक, कक्षा 6ठी तक LKG UKG में स्पून फीडिंग करवा देते थे, लेकिन अब वो सिस्टम गायब हो गया है। अब आपको, आपकी स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा, आपको जो भी करना है खुद के निर्णय लेने हैं। मुझे बेहतर तरीके से पता है कि मैं विज्ञान पढ़ता, मैं BSc करता तो तब क्या होता, और जब मैं BA कर रहा हूँ तो तब क्या होता। और रही बात इसकी कि 90% लाने के बाद मैं एक ऐसी स्ट्रीम में घुसता हूँ जिसको समाज के द्वारा उतना बेहतर नहीं माना गया है। अमूमन यही कहा जाता है कि हिंदी ऑनर्स के बच्चे, यानी हालांकि हमारे क्षेत्र में तो हिंदी को लेकर इतनी बातें नहीं हो पाती है, लेकिन तब भी हिंदी को एक ऐसे विषय के रूप में नहीं देखा जाता है जिसमें कि अधिक बुद्धि कौशल का उपयोग करना पड़ता है, तर्क वितर्क देने पड़ते हैं या पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग इस विषय से परिचित नहीं है। अब जैसा कि मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर मैं हिंदी ऑनर्स कर रहा हूँ तो मुझे कितना ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मेरा प्रवेश हिंदू कॉलेज में होता है तो फिर मुझे पता चलता है कि सब्जेक्ट विषय विषय ही होता है और उस विषय को लेकर प्रत्येक शिक्षक उतना ही ज़्यादा संवेदनशील होता है जितना गणित का शिक्षक संवेदनशील है, उतना ही संवेदनशील हमारे हिंदी के शिक्षक भी है। जितना गणित के शिक्षक अपने बच्चों को लेकर मेहनत करता है उतनी ही मेहनत हमारे शिक्षक भी हमें लेकर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये सब्जेक्ट अगर कोई ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये उस सब्जेक्ट में कमज़ोर था। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले को मैथ समझ में नहीं आती है या कॉमर्स वाले को बायोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ठीक है, उसे बायोलॉजी समझ में आती है लेकिन कॉमर्स बेहतर तरीके से आती है। बाकी युवाओं का काम है कि हमें रूढ़िवादी विचारों को तोड़ना चाहिए और मैंने भी यही किया। अब ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सोसाइटी हमेशा रिजल्ट मांगती है, परिणाम मांगती है, आउटकम मांगती है और जीवन में रिस्क लेना पड़ता है, तो हमें रिस्क हमेशा ही लेना चाहिए। हो सकता है कि ये निर्णय मुझे बहुत ज़्यादा डुबा दे और हो सकता है कि यही निर्णय मेरा भविष्य बना दे, तो वो रिस्क था। अब देखिए आगे क्या होता है और किस प्रकार से होता है। अगर इस निर्णय के द्वारा कुछ अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं चांसेस है बहुत सारे बच्चे जो अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहेंगे, जो लिटरेचर के प्रति आकर्षित रहते हैं, कक्षा 12वीं तक का जो लिटरेचर लिखते हैं लेकिन साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, अगर मैं कुछ अच्छा कर पाता हूँ, अगर मैं कुछ बेहतर कर पाता हूँ, तो उन बच्चों को प्रेरणा अवश्य मिलेगी और उनके जो उन पर जो पारिवारिक दबाव होता है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। या तो मैं एक अच्छा उदाहरण बन के छात्र छात्राओं के बीच आऊँगा या मैं एक गंदा उदाहरण बन के छात्र छात्राओं के बीच आऊँगा, और मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक अच्छा उदाहरण भी बन सकता हूँ और मैं एक ख़राब उदाहरण भी बन सकता हूँ। और रही बात इसकी कि 90% आने के बाद मैं एक ऐसे सब्जेक्ट को क्यों लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि वही 90% है, वही 91.75% है मेरी जो मैंने कक्षा 12वीं में मेहनत करी थी उसी के बलबूते मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिलता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट कट ऑफ 91 गई थी, यानी कि 91 से नीचे वाले को उस कॉलेज में हिंदी भी नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कक्षा 12वीं की मेरी मेहनत थी, हालांकि वो अलग दिशा में थी, लेकिन उसी के परिणाम स्वरूप मैं हिंदू कॉलेज में प्रवेश कर पाता हूँ। और अभी तक मुझे लगता है कि मेरा ये डिसीजन बिल्कुल सही है, और डिसीजन को लेकर मैं अभी भी काफ़ी उत्साहित हूँ, काफ़ी आकर्षित स्वयं को महसूस कर पाता हूँ, काफ़ी प्रसन्न रहता हूँ। और कम से कम मेरे मन में ये नहीं है कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, मुझे जो करना था मैंने किया। और बाकी समाज की बात रही तो समाज तो बोलते रहता है, समाज कहेगा अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो समाज तब भी कहेगा, आप कुछ बुरा करेंगे समाज तब भी कहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको खुद से सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट आपको देना है, और आप एक अच्छा उदाहरण भी बन सकते हैं और आप एक गंदा बुरा उदाहरण भी बन सकते हैं। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार काम करना चाहिए।
आप हमेशा बच्चों के स्कूल्स में जाकर लेक्चर देते हो और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। एक प्रोग्राम था बोर्ड से डर नहीं, जिसमें आपने बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों से बात की थी, उसके बारे में प्लीज़ बताइए, और ये भी कि स्ट्रेस को बच्चे कैसे मैनेज करें।
जी मृगेश, मैं बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में गया हूँ, बहुत सारे विद्यालयों में गया हूँ, और वहाँ जाकर मैंने अपनी बात रखने का प्रयत्न किया, अपने विचार साझा करने का प्रयत्न किया है। और रही बात इसकी कि बोर्ड से डर नहीं कार्यक्रम किस तरह काम करता था, हमारे द्वारा बोर्ड से डर नहीं कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसका संचालन क्यों किया गया, और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और उन छात्र छात्राओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा जिनको लेकर इस कार्यक्रम को संचालित करने की प्रेरणा हमें मिली थी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें शिक्षकों को लेकर डर रहता है, और शिक्षकों को लेकर जो डर रहता है उसके कारण उन्हें बोर्ड से भी डर लगने लगता है, क्योंकि हमने उसी समय कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो मुझे लगता था कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है प्रेजेंट टाइम का, उसी समय का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बलबूते हम उन छात्र छात्राओं को थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं जो किसी भी प्रकार का ट्यूशन नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें समस्या ये थी कि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई संस्थान नहीं था जिसके अंदर हम वहाँ बैठकर छात्र छात्राओं को पढ़ा सके। तो ऐसे में नरेंद्र लडवाल जी ने हमारी मदद करी, और उनके द्वारा जो उनका होटल है सी हॉक, उसका एक बड़ा सा रूम हमें उपलब्ध करवाया गया, और वहाँ छात्र छात्राओं ने अच्छे इन्वायरमेंट में एक बढ़िया परिवेश में बैठकर पढ़ा। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि हम एक टीचर नहीं थे, हमारे अंदर वो टीचिंग क्वालिटी नहीं थी, हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस साझा करने के उद्देश्य से बोर्ड से डर नहीं कार्यक्रम चला रहे थे, क्योंकि हमारे पास करंट टाइम एक्सपीरियंस था, करंट टाइम बातें थी, और उसी को लेकर हम इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने के बारे में विचार कर रहे थे। इस कार्यक्रम को कराने में बहुत सारे मेरे जवाहर नवोदय विद्यालय के साथी हैं, उन सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया, और अपने अपने स्तर से उन्होंने बोर्ड से डर नहीं कार्यक्रम जिले के विभिन्न स्थानों में संचालित करवाया, और चंपावत में नरेंद्र लडवाल जी के होटल सी हॉक में इसका संचालन हुआ, जहाँ लगभग 20 से 25 छात्र छात्राएँ उपलब्ध रहे। और बड़ी बात यह है जिसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ, जिसे लेकर मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ बढ़िया काम किया है, वो ऐसे बच्चे थे जो किसी भी प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं थे या किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ले रहे थे। तो नाम के अनुरूप जिन छात्रों को बोर्ड से डर था वही छात्र बोर्ड से डर नहीं कार्यक्रम में हमारे पास आए और हमने उन्हें एज ए सीनियर हमने उन्हें परिवार के सदस्य की तरह ही पढ़ाया। हमने उन्हें वो एक्सपीरियंस दिया कि कैसे परिवार का सदस्य पढ़ाता है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे नौदे में बहुत बेहतर तरीके से होती थी, क्योंकि हमें भी जब कोई सवाल नहीं आता था तो हम भी अपने सीनियर से पूछ लेते थे कि भैया ये बता दो या दादा ये बता दो। तो इसी प्रक्रिया के साथ साथ हमने ये सोचा कि अगर यही पद्धति अगर हम ज्वार नवोदय विद्यालय से थोड़ा बाहर भी लेकर आएँ तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक अच्छा फर्क आएगा और वो बच्चे जो ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं वो छात्र छात्राएं भी थोड़ा सा पढ़ सकेंगे। और कहीं ना कहीं जो बच्चे फेल होने की कगार में थे, बिल्कुल फेल होने की कगार में थे, वो बच्चे भी इस कार्यक्रम से जुड़कर थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर पाते थे। मैं इस दावे की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि जितने भी बच्चे बोर्ड से डर नहीं कार्यक्रम में आए वो उनका क्रेडिट हमें दिया जाना चाहिए कि हमने उन्हें पास कराने में अहम भूमिका निभाई है। कहीं ना कहीं ये सारी मेहनत उन्हीं छात्र छात्राओं की थी कि वो सभी बच्चे पास हुए। हमने केवल और केवल ये था कि हम 2-3 घंटे के अंदर वो सारे क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करवा देते थे जिन्हें समझने में उन्हें ज़्यादा समय लगता, तो हमने उनका थोड़ा समय बचाया और थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल बनाने में मदद करी। बाकी उनकी मेहनत थी कि वो बच्चे पास हुए और उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो यही था मेरे इस बोर्ड से डर नहीं कार्यक्रम।
स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में आपको क्या बेहतर लगा? अब जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ की लाइफ स्टाइल आपको कैसी लगी?
मुर्गे, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ के बारे में मैं बता रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपैरिजन है जवाहर नवोदय विद्यालय और हिंदू कॉलेज के बीच, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, यानी कि कौन सी लाइफ स्टाइल मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये मेरे पर्सनली मेरे थॉट है, व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार है, हो सकता है कि आपके अलग हो और हमारे श्रोताओं के अलग हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं कॉलेज लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख पाया जो शायद मैं स्कूल लाइफ में नहीं सीख पाता। तो कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ आपको वास्तविक जीवन से परिचय करवाती है, जहां आप स्कूल लाइफ में बहुत सारी स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में रहते हैं, आप एक मीठे संसार में रहते हैं जहां सब कुछ अच्छा ही होते चला जाता है, आपके अच्छे दोस्त होते हैं, सब कुछ लगभग पॉजिटिविटी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि और बात करी जाए कॉलेज लाइफ की, तो कॉलेज लाइफ में सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है, आपको फैमिली भी देखनी पड़ती है, आपको पढ़ाई भी देखनी पड़ती है और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बैलेंस करके आपको अपने को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर जीवन को समझने की अगर आप व्यापक दृष्टि अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो आपके लिए कॉलेज लाइफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और आपको कॉलेज लाइफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा स्कूल लाइफ के कंपेरिजन में। जैसा कि मेरा है तो मैं जीवन दृष्टि को समझने वाला व्यक्ति हूँ, अपने को मैं जीवन मूल्यों को समझने वाला व्यक्ति मानता हूँ, तो इसीलिए मुझे कॉलेज लाइफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि वहाँ लिमिटेशन नहीं है, अवरोध नहीं है किसी प्रकार का, हम आज़ाद पक्षी की तरह घूम सकते हैं, हमें जो करना है हम सब सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे अंदर व्याप्त है, और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का कॉन्सेप्ट जो है कॉलेज लाइफ में ज़्यादा है और स्कूल लाइफ में थोड़ा सा कम। तो इसका मतलब ये कहते ही नहीं है कि मैं हिंदू कॉलेज और जवाहर नवोदय विद्यालय का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये केवल लाइफ स्टाइल की बात है कि किस प्रकार से कौन सी लाइफ स्टाइल पर्सनली मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हो सकता है कि आपके लिए अलग हो और हमारे जो लिसनर्स हैं जो हमारे श्रोतागण हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग हो।
जी
मृगेश, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सवाल है कि व्हाट इज प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इज़ द गैप बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, यानी कि समस्या क्या होना चाहिए और क्या है, यानी कि क्या हो रहा है, उसके बीच का एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम इस गैप को भर लें तो कहीं ना कहीं समस्या स्वयं ख़त्म हो जाएगी और समस्या के कारण ही तनाव पैदा होता है और तनाव के कारण ही बच्चे अवसाद में रहते हैं और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं और चिड़चिड़ापन बच्चों में आने लगता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम तनावग्रस्त क्यों हो रहे हैं, हम क्यों अवसाद में जा रहे हैं। अगर मुझसे अगर कोई सुझाव पूछे कि हम किस तरह इन जो अवसाद हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रहा है, उसको दूर कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे प्राकृतिक चीज़ यही है कि हमें प्रकृति के ज़्यादा समीप रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति के जितना समीप रहेंगे कहीं ना कहीं हम स्वयं को प्रकृति के समीप रखेंगे तो प्रकृति हमें कुछ बेहतर परिणाम अवश्य देगी। अभी मोबाइल के कारण क्या हो रहा है कि हमारी आंखों में दर्द होने लगा है। अभी कह सकते हैं कि इसको बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक्सक्यूज़ है, बहुत सारे बच्चों के लिए ये सो कॉल्ड रियलिटी है कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो सुबह से शाम तक का उन्हें मोबाइल में गुजारना ही पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल हमें अपने से पूछना चाहिए कि हम कितना समय ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और कितना समय हम इस मोबाइल में बिता रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में अपना समय को देना हो या किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियाँ जो ऑनलाइन क्लास से हटकर है। तो अगर बात करी जाए इसकी कि हम किस तरह से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस को कम करने का सबसे बड़ा साधन यही हो सकता है कि हम प्रकृति के जितने समीप रहेंगे हमें उतना कम अवसाद होगा और उतने आसानी से हम इस स्ट्रेस से लड़ने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। तो आप विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे आप घूम सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप उपन्यास पढ़ सकते हैं, आप लिटरेचर के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप समय के अभाव में कुछ समय पहले नहीं कर पाते थे। मैं जानता हूँ कि कहने और करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, लेकिन कहते हैं कि छोटे छोटे जो एक्शन होते हैं वो बड़े परिणाम देने में हमारी मदद करते हैं। तो छोटे छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए और मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रेस को कम करने में बच्चे काफ़ी हद तक सफल होंगे और प्रकृति के साथ अपना जो रिलेशन है, प्रकृति के साथ जो अपना कोऑर्डिनेशन है, जो संबंध है, उसको बनाए रखें, ताकि ये स्ट्रेस हमेशा इसीलिए होता है कि हम प्रकृति के ज़्यादा समीप नहीं हो पाते हैं। हमारे जीवन में वो सारी अप्राकृतिक क्रियाएं चलती रहती है जिसके कारण जिसका हमें सॉल्यूशन नहीं पता होता है, जिसका हमें समाधान नहीं पता होता। अगर हमें समाधान पता चल जाए तो तनाव खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। पहली चीज़ ये है कि आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपको तनाव क्यों हो रहा है, आपको क्यों स्ट्रेस हो रहा है। अगर आपको समस्या पता चल जाती है तो आप आसानी से इसे कवर कर सकते हैं और अपने परिवार के समीप रहिए और अपने दोस्तों के साथ बातें कीजिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए और विभिन्न प्रकार के आप प्राकृतिक क्रियाकलाप कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप इस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से लड़ सकते हैं बहुत आसानी से।
नमन, ये पॉडकास्ट मुख्य रूप से युवा वर्ग के लिए मैंने बनाई है, जिसमें मेरे गेस्ट भी युवा होंगे और लिसनर्स तो कोई भी हो सकते हैं, पर टारगेट ऑडियंस मेरा यूथ है। तो आप बाल विधानसभा के अध्यक्ष हैं, नाम सुनकर ऐसा लगता है आप यूथ के लिए उस विधानसभा में काम करते होंगे। तो आप हमें बताइए कि ये बाल विधानसभा कैसे चलती है और इसमें क्या होता है।
मृगेश, आपको बताते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां इस तरह की विधानसभा का गठन किया गया है। रही बात इसकी कि बाल विधानसभा किस तरह से काम करती है, तो बाल विधानसभा सीधे SCPCR यानी कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग से कॉन्टैक्ट में रहता है और इस प्रकार से हम अपनी समस्याओं को, हम अपने आसपास के जो बच्चों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को SCPCR के पास बहुत आसानी से रख सकते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो बच्चों को लेकर, चाहे वो एजुकेशन में हो या बात हो कि जैसे चाइल्ड लेबर बढ़ रहे हैं अपने राज्य में उत्तराखंड में, चाहे वो शारदा बैराज के पास हो या रेत या खनन कार्यों में हो, तो उन सारी वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम SCPCR को दे सकते हैं और उत्तराखंड राज्य की जो SCPCR है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, वो इस पर एक्शन लेकर तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। और बड़ी चीज़ ये है कि बाल विधानसभा के सारे मेंबर, चाहे मैं अध्यक्ष हूँ या कोई भी ऐसा, चाहे कोई बाल विधायक है या मुख्यमंत्री है, वो सभी नेताओं के डायरेक्टली टच में होते हैं। जैसे हम लोगों का जब भी ऑर्गेनाइज होता है बाल विधानसभा, तो तब विधानसभा के अध्यक्ष आते हैं, वहाँ तमाम प्रकार के नेता आते हैं और उनसे बहुत सारी जानकारी हमें ग्राउंड लेवल पर सीखने को मिल पाती है। तो एक अच्छा मौका है क्षेत्र के युवाओं के लिए, क्षेत्र के बच्चों के लिए, कि वो इस दिशा में भी आगे बढ़े। और अगर बाल विधानसभा से अगर आपके आसपास कोई इस प्रकार की समस्या हो रही है जो कि बाल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरी वेबसाइट पर जाए namanjoshi.com पर, वहाँ मुझसे संपर्क करें और अपनी समस्याएँ रखें और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि वो समस्याएँ मैं सरकार के पास रखने की पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें SCPCR जाए और SCPCR उस चीज़ को लेकर एक्शन ले और हमारी जो विधानसभा है, जो विधानसभा है उस वो विधानसभा भी उस चीज़ को लेकर संवेदनशील हो। और जब भी हमारा सत्र चलता है तो हमारे द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं उस पर विधानसभा में चर्चा की जाती है। और जब भी कोई बिल पास किया जाता है तो जैसे हमारे यहाँ जो बाल विधानसभा में बिल पास किया जा रहा है वो बिल असली वाली जो विधानसभा होती है उस विधानसभा में भी उस बिल पर गौर किया जाता है और तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें हैं जो भी चीज़ें हैं वो भी वो चीज़ें अडॉप्ट की जाती है एक बड़े व्यापक क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के साथ जुड़ने के लिए, उनके संपर्क में रहने के लिए और युवाओं को प्रेरित करने के लिए। अगर किसी के पास किसी की कोई समस्या है तो आप dhanamanjushi.com पर जाइए, वहाँ कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपकी समस्या को SCPCR के पास रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि SCPCR उस समस्या का समाधान अवश्य करेगी और सरकार के पास भी आपकी समस्या रखने में आपकी मदद करेगी। तो उत्तराखंड बाल विधानसभा का बाल विधानसभा बहुत बेहतर तरीके से काम करती है, इसके अंदर प्लान इंडिया भी आता है, SCPCR भी आता है और साथ ही साथ में भुवनेश्वरी महिला आश्रम भी आता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ओवरऑल ये बाल विधानसभा बच्चों के लिए काम करती है, चाइल्ड राइट पर काम करती है, बाल अधिकारों पर काम करती है और बच्चों के अंदर तमाम प्रकार की समस्याओं को साइकोलॉजिकल स्तर पर यानी कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखने का प्रयत्न भी करती है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी और आने वाले उन छात्र छात्राओं के लिए भी जो बाल विधानसभा से जुड़ना चाहता है। तो अगर आपके पास कोई समस्या है तो अपने क्षेत्र के उस बाल विधायक से संपर्क अवश्य करें और जो भी समस्या है वो SCPCR तक पहुंचाएं और समाधान होगा, क्योंकि आपके ऊपर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फंडिंग आता है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है, तो उस पैसे का प्रयोग करना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। तो यही है बाल विधानसभा का कॉन्सेप्ट और यही है कि बाल विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मैं एक कार्यक्रम चला रहा हूँ बच्चा क्रांति, उसमें हम बच्चों की समस्याओं को SCPCR के समक्ष रखते हैं और बहुत केस में बहुत बार ऐसा होता है कि उन समस्याओं का समाधान हो जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। लेकिन ये है कि कुछ ना होने से कुछ होने में फ़ायदा है, इसलिए इन सारी चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए और खुद को मोटिवेटेड रखना चाहिए, खुद को प्रेरित रखना चाहिए और जितना भी अपने स्तर से हो सके नियमित कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए।
नमन, हाल ही में आपने dhanamanjushi.com नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें मैंने पढ़ा था कि आप लघु उद्यमियों को इंटरनेशनल मार्केट दिलवाना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या आइडिया है, मतलब ये वेबसाइट कैसे काम करेगी और आपको ये आइडिया कैसे आया?
मृगेश, मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि अपने पहाड़ में 5 से 10 रुपए किलो बिकने वाला माल्टा दिल्ली के बड़े बड़े मॉलों में जाकर 200 से 250 रुपए किलो बिक जाता है और उसका नाम परिवर्तित हो जाता है, उसका नाम बन जाता है हिमालया ऑरेंज। हमारे यहाँ का माल्टा बाहर हिमालया ऑरेंज के नाम से बिकता है और बीज का जो किसान है, बीज का जो उत्पादक करता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं हो पाता। जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड की बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ऑनलाइन लाना ही चाहिए। जैसे अगर बात करी जाए IMA दिल्ली की, जहाँ हर राज्य का राज्य के जो भी सांस्कृतिक विरासत होती है उन विरासतों को वहाँ संजो के रखा जाता है। आप चाहें तो उन चीज़ों को खरीद सकते हैं, फूड स्टॉल लगाए जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड के फूड स्टॉल में मोमो बेचे जाते हैं और छोला भटूरा बेचा जाता है। अब मैं इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हो उठता हूँ कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत किस दिशा में जा रही है। तो ऐसे में मुझे आइडिया आता है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ के लघु उद्यमियों को जोड़कर, क्योंकि ई कॉमर्स यहाँ के लघु उद्यमियों के लिए एक नई चीज़ है, तो इसीलिए अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ के लघु उद्यमी, यहाँ के किसान ई कॉमर्स के प्रति कितना अट्रैक्ट हो पाते हैं और हम अपनी और से उन्हें कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो dhanamanjushi.com का जो मेन थीम है वो यही है कि हम पहाड़ के लघु उद्यमियों को डायरेक्टली ई कॉमर्स के साथ जोड़ें, जिससे कि उनका उत्पाद कम से कम इंटरनेट में उपस्थित हो। ये बात अलग है कि कोई ख़रीदना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, लेकिन ये है कि अगर उनका उत्पाद इंटरनेट पर उपलब्ध है तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ते हैं उनके उत्पाद को खरीदे जाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैंने सुना है कि पहाड़ की जो चीड़ के पत्ते होते हैं नीडल शेप के, उनकी टोकरियाँ बहुत बेहतर होती है। अब मैं ख़रीदना चाहता हूँ, जब मैं नेट में सर्च करता हूँ, जब मैं गूगल में टाइप करता हूँ, तो मुझे किसी प्रकार की कोई भी चीड़ के पत्तों से बनी टोकरी नहीं मिल पाती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें, अगर उस समय मेरी वेबसाइट होती और वहाँ मैंने denamanjoshi.com में चीड़ की जो टोकरियाँ हैं उनको लिस्ट किया होता, तो जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होता और उसको खरीद पाता। तो इस प्रकार से किसानों की जो रेवेन्यू होती, किसानों की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बढ़ती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसानों की कंडीशन को बहुत ज़्यादा सुधार देंगे या बहुत ज़्यादा एक चमत्कारी परिवर्तन कर देंगे, लेकिन ये है कि हम चांसेस को बढ़ा सकते हैं, अपने स्तर से चांसेस को बढ़ा सकते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्तर से समाज के लिए जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। बाकी ये बात अलग है कि उसका कंक्लूजन कितना निकल रहा है, उसके आउटकम क्या आ रहे हैं और उसका रिजल्ट पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, लेकिन कम से कम एक बार कार्य को करने की कोशिश मुझे लगता है पर्सनली कि करनी चाहिए। और इसी दिशा में denamanjoshi.com खुद दावा करता है कि हम 26,000 प्लस पिन कोड में ऑल इंडिया डिलीवर करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन लिंक बना दिया गया है। सारी ई कॉमर्स से जितने भी जुड़े संसाधन है, SSL सिक्योरिटी हमारी वेबसाइट में सब कुछ है, लेकिन ये है कि अभी हमें दूसरा स्टेप ये लेना है कि हम पहाड़ के लोगों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के लघु उद्यमियों को कितना अट्रैक्ट कर पाते ई कॉमर्स के लिए। ये निर्धारित करेगा कि हम इस दिशा में कितने सफल हुए हैं या कितने असफल हुए हैं। हो सकता है कि हम इस दिशा में सफल हो सकता है कि हम इस दिशा में असफल हो, लेकिन denamanjoshi.com आप सभी के बीच मौजूद है, अपने सारे संसाधनों को लेकर, जहां SSL सिक्योरिटी है, सेफ पेमेंट ऑप्शन मिलता है आपको, सब कुछ है, लेकिन सेकंड स्टेप में हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। अब देखिए कितने किसान इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, कितने लघु उद्यमियों को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई सपोर्ट अभी तक नहीं दिखा पा रही है। अगर बात करी जाए स्टार्टअप इंडिया की, तो ये एक अलग डायरेक्शन में बात हो जाएगी। इसलिए मैं ओवरऑल कंक्लूजन यही निकालना चाहूँगा कि denamanjoshi.com किसानों को, लघु उद्यमियों को ई कॉमर्स से डायरेक्टली जोड़ने के लिए संवेदनशील है, प्रयत्नशील है और इसी दिशा में वो कार्य करने की अपेक्षा करता है। आगे हम अभी कुछ और वेबसाइटें भी बनाने जा रहे हैं जो कि पहाड़ के लघु उद्यमियों को थोड़ा सा मुनाफा दे सके। तो मुझे लगता है कि यही सब है मृगेश, और बाकी आपका जो कार्यक्रम था मुझे काफ़ी बेहतर लगा। पिछले कार्यक्रम भी मैंने देखे जिसमें आपके द्वारा युवाओं को नियमित प्रेरित करने के लिए तमाम प्रकार के वक्ताओं को बुलाया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये कार्यक्रम बहुत बेहतर ढंग से चलेगा और आगे सफलता भी इस कार्यक्रम को मिलेगी। धन्यवाद मृगेश, मिलते हैं कुछ समय बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।